नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार साथियों, मैं मधु लेकर आई हूँ खबर राज्य गुजरात के सूरत शहर से। सूरत शहर जिस पर हमें गर्व है, 1980 के दशक में मुंबई के वस्त्र उद्योग की गिरावट के बाद सूरत पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र और बाद में एक प्रमुख हीरा काटने और चमकाने वाला केंद्र के रूप में उभर गया। वर्तमान समय में उद्योगों में वृद्धि के कारण रोजगार के अनगिनत अवसर उपलब्ध होने से यह देश भर के अप्रवासियों को आकर्षित करता है। 1994 में अपनी गंदगी और प्लेग फैलने के लिए कुख्यात सूरत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक मिसाल बन गई है। 1997 में सूरत दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं को लागू करके दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बन गया है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पटेल कार्यक्रम। पटेल सूरत की रोग निगरानी का हिस्सा है। देश में अपनी तरह का वास्तविक समय मच्छर निगरानी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है बीमारी होने से पहले उसे दूर करने और रोकने में मदद करना। यह कई अन्य नवीन समाधानों के साथ सूरत नगर निगम को देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में अग्रणी और विशेष बनाता है। अपने वास्तविक समय मच्छर निगरानी कार्यक्रम के साथ अपनी तरह की शहरी स्वास्थ्य और जलवायु रिजिलेशन केंद्र का एक ऐसा पहला केंद्र है जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीति तैयार करता है और एक वास्तविक समय की शहरी सेवा निगरानी प्रणाली है जो स्वास्थ्य, पानी और ठोस अपशिष्ट से संबंधित शिकायतों पर निगरानी रखता है। 2011 में 4.8 मिलियन की आबादी के साथ सूरत राज्य में दूसरा सबसे आबादी वाला शहर और देश में 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। फिर भी यह देश में 4था सबसे साफ शहर है। भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों को सूरत शहर से सीख लेनी चाहिए और आशावादी रुख के साथ विभिन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद
दोस्तों, मैं हूं राजीव और मैं लेकर आया हूं इस बार एक खबर कोल इंडिया से। जी हां, वेतन बढ़ोतरी के बाद अब कोल इंडिया से उत्पादन वृद्धि पर ध्यान लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि हाल में ही की गई वेतन बढ़ोतरी के बाद वह अपनी लाभप्रदता को गिरने नहीं दे सकती है। उल्लेखनीय है कि इस वेतन वृद्धि से कोल इंडिया पर करीब 6000 करोड़ रुपए वार्षिक भार बढ़ने का अनुमान है। कोयला सचिव सुशील कुमार ने कहा है कि कोल इंडिया को अपना उत्पादन बढ़ाना ही होगा। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जब कर्मचारियों का नेतृत्व और प्रबंधन मुझसे मिलने आया तो मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। गौर मतलब है कि कोल इंडिया ने अक्टूबर में श्रमिक संगठनों के साथ एक वेतन समझौता किया था, जिसमें 5 साल की अवधि के लिए वेतन में 20% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसकी वार्षिक अनुमानित लागत 5,667 करोड़ रुपए है। कुमार ने कहा कि चूंकि वेतन वृद्धि से 5 से 6 हजार करोड़ रुपए जाएगा, लेकिन सरकार कंपनी शेयर की कीमत गिरने नहीं दे सकती है और हम अपनी लाभप्रदता को भी गिरने नहीं दे सकते हैं, इसलिए कोल इंडिया को हर हाल में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना ही होगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं मधु बातें करूंगी मीडिया की दुनिया की। भारतीय भाषा की समाचार वेबसाइटों में कार्रवाई निरंतर हो रही है, जहां हाल ही में बीबीसी ने तेलुगु, मराठी, गुजराती और पंजाबी में समाचार साइटें शुरू की, वहीं तार एक अंग्रेजी समाचार वेबसाइट ने अपने उर्दू संस्करण की शुरुआत की। अगस्त में गूगल ने उर्दू, मलयालम और तमिल सहित वॉइस खोज का शुभारंभ किया। यह पहले से हिंदी और अंग्रेजी में आवाज खोज है। 2 साल पहले गूगल को एहसास हुआ कि अगर हम भारतीय भाषाओं को नहीं अपनाएंगे तो हम व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों और उनके मालिकों को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर उन्हें इस व्यवसाय में बने रहना है तो स्थानीय भाषाओं को महत्व देना होगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।